ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग इज गुड। इज मॉर्निंग गुड? आज हम एक छोटे से आध्यात्मिक ट्रेनिंग 4 दिवस के लास्ट पड़ाव पर पहुंचे हैं। आज हम थोड़े से जिस संस्थान में हम बैठे हैं उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हमें इसकी कुछ हिस्ट्री, इतिहास, इसका प्रारंभ क्या था, कैसा था, वो जानना चाहते हैं, क्योंकि स्टोरी जो होती है या इतिहास जो भी होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इस संस्थान में जहां हम बैठे हैं इसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी नहीं, विश्व भर में इसके विद्यालय हैं, जो कि करीब 145 देशों में सेवा केंद्र कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर धर्म को नहीं मानते, वहां पर भी अपनी सेवाएं मेडिटेशन सेंटर के नाम से या अनेक तरीके से सेवाएं दे रहे हैं। इस संस्थान जब ये विद्यालय है तो विद्यालय के सब्जेक्ट भी होते होंगे, तो हमारे यहां पर 4 सब्जेक्ट है। जैसे कोई छोटी क्लास में होते हैं तो एक सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं। हमारे सब्जेक्ट भी 10th तक आते आते 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, ऐसा होता है ना स्कूल्स में। फिर उसके बाद में धीरे 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 जब तक MA तक आते हैं तो फिर 1 सब्जेक्ट रह जाता है, मास्टरी तो 1 टॉपिक और PhD तो बिल्कुल पर्टिकुलर 1 टॉपिक पर आ जाता है। तो यहां पर भी 4 सब्जेक्ट हैं। प्रथम है ज्ञान, जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब ज्ञान की बातें हैं। दूसरा है योग, जो आप बीच बीच में मेडिटेशन का ड्रिल करते हैं, तो जो ज्ञान में हम सुन रहे होते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक लेसन लिया, आप आत्मा है इस देह को चलाने वाली एक नई चीज। वैसे तो ये सदा अनंत हम सुनते आए हैं, मेरे सामने हमारे सिख भाई बैठे हैं, मुझे याद आता है गुरुवाणी का वो शब्द कि इक्को माई जगत वियाई तिन चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लियावे दीवान। एक साथ में एक शब्द और आता था, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो ये ज्ञान की बातें कि आत्मा तो सदा अनंत है और हम सबको मालूम है, पर उसका अभ्यास करना वो योग कहलाता है, प्रैक्टिकल अप्लाई करना। फिर तीसरा है धारणा, कि जो हमने ज्ञान की बातें सुनी क्या वो बातें मेरे जीवन में है। एक जगह लिखा हुआ था, गॉड गिव मी पेशेंस। क्या लिखा था बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, बट हरियप क्या था, मतलब तो अप्लाई नहीं हो रहा ना। मांग पेशेंस रहे हैं पर जल्दी से दे दो तो विरोधाभासी हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल हम ओम शांति की बात करते हैं और अगर मेरे ही जीवन में शांति नहीं है तो ये थोड़ा सा, या छोटी छोटी बातों में हम एग्रेसिव हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो फिर कहेंगे ना कि आप ज्ञान में जा तो रहे हो पर आपके जीवन में ज्ञान उतरा नहीं है। तो तीसरा है धारणा, आत्मसात कर लेना, जीवन में धारण कर लेना। फिर चौथा आता है सेवा। एक सेवा है जो हम समाज में अनेक स्थानों पर लोगों को सहयोग देके, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई किसी तरीके से, लेकिन अगर आपका जीवन ही एक चलता फिरता सेवा का केंद्र बन जाए, लोग आपको देखकर इंस्पायर हों, तो शायद इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं होगी। तो चार सब्जेक्ट है। अब ये चारों सब्जेक्ट का जो सोर्स है वो आप लोगों ने कहीं सुना हो थोड़ा बहुत भी ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में, तो एक मुरली शब्द आता है। किसी ने सुना ये शब्द कि ब्रह्मा, किसी ने सुना है ना, ब्रह्मा कुमारीज में मुरली बजती है। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते, बहन जी कई दिन हो जाते ना आते 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 ज्ञान सुनते, तो वो पूछते, बहन जी वो मुरली तो नहीं बजी? बिकॉज उनके दिमाग में है कि कोई वो काठ की जो मुरली है वो कोई सुंदर धुन बजती होगी, पर ये मुरली क्या चीज है, ये ज्ञान का स्रोत्र क्या चीज है, ये कहां से इसका उद्गम हुआ? तो इस इतिहास के पीछे, इस ब्रह्मा कुमारीज का जो इतिहास है, इसमें आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, पीछे दिखाई दे रही है। ये एक तस्वीर से तो आप वाकिफ होंगे, जिन्हें हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कहते हैं। आपने अलग अलग स्थानों में कैंपस में ये तस्वीर देखी होगी, ऊपर में ज्योति निराकार और नीचे में ब्रह्मा बाबा की तस्वीर। पर इनके साथ में जो है, इन्हें हम मनोहर इंदिरा दादी जी कहते थे। ये बाबा के फैमिली में, जब बाबा बाल्यकाल से थे, छोटे परिवार से, लौकिक में जो बाबा का परिवार था, अब हम बार बार इनका नाम ना लेके इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बाबा कह देते हैं, क्योंकि ये इस संस्था के फाउंडर रहे हैं, इसलिए आप समझ जाएंगे सभी। इज इट राइट? समझ जाएंगे ना, बार बार जब बाबा शब्द आएगा तो आप ये समझ जाइएगा। तो ये इन्हीं के परिवार के साथ, घर के साथ ही इनका घर था। जो बाबा का बेटा था वो इनके भाई का दोस्त भी था, तो पारिवारिक आना जाना था शुरू से लेकर के। और फिर जब इस संस्थान की स्थापना हुई तब भी ये स्टार्टिंग के उन सदस्यों में से हैं, इसलिए ये जब वो गाथा सुनाते थे तो ऐसे लगता था जैसे आज ही मुंह से बोल रहे हों और हम वहीं पहुंच गए हों। तो हमने तो बाबा को नहीं देखा, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने के बाद ये वाला जन्म हम, मेरा तो हुआ, इसलिए हमें नहीं मालूम। लेकिन इनके श्री मुख से, मनहूर दादी जी के मुख से जो बाबा की जीवन गाथा सुनी हमने, उसका थोड़ा सा हम चित्रण यहां पर करते हैं। एक बार ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बाबा के बाल्यकाल की है। इनका पूरा नाम था दादा लेखराज। आप भारत के, अनडिवाइडेड भारत के, सिंध हैदराबाद में रहते थे। और आप ये सोच सकते हैं कि एक नन्हा बच्चा, ये तो फिर भी यंग एज की हमारे पास कुछ तस्वीरें मिली, वो हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है, कि एक नन्हा बच्चा जिसकी बहुत ही अल्प आयु में माता चली गई, और थोड़े से बड़े हुए तो पिता चले गए, वो बच्चा कैसा होगा? वो बच्चा कैसा होगा? हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तो हम बाबा के जीवन की गाथा पर बात कर रहे थे, और जिसमें बाबा के बारे में कि बाल्यकाल में बाबा का नाम लेखराज था, अनडिवाइडेड भारत में, सिंध हैदराबाद में आपका परिवार था, आपकी बहुत अल्प आयु में माता चली गई, थोड़े समय के बाद पिता चले गए। हमारी भाषा में तो वो बिचारा कहलाता है, आम साधारण। पर ये तो ऊपर वाला जानता है कि कोई भी घटना जीवन में तभी घटती है जब उसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। शायद बाबा को जीवन का तजुर्बा देना था। बाल्यकाल से बाबा के माना लेखराज बाबू के जीवन में श्री कृष्ण जी का बहुत महत्व था। छोटा बच्चा वो बहुत अच्छे से श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, भक्ति करते थे। एक नन्हे बच्चे को ज्यादा कोई परिवार से कुछ नहीं मिला था। इनके पिता शिक्षक थे, फिर वो जल्दी चले गए। तो ये अपने चाचा के साथ, वो एक बहुत दानी थे, बहुत अच्छे व्यापारी थे, उनका बड़ा अनाज का व्यापार था और खुल के दान किया करते थे। पर व्यापार की भी एक नीति होती है। तो जब लेखराज बाबा अपने चाचा के साथ कार्य करते थे तो इनके मन में ना कोई गरीब आ जाता था तो थोड़ी दया भाव आ जाती थी। तो अब एक रुपए की समझो एक किलो चीज है तो वो एक रुपए लेते और दो किलो तोल देते कि सोचते सच में बहुत गरीब है, क्या करेगा बेचारा, थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं। धान अलग चीज है, पर जब बिजनेस करना है तो इनके जब चाचा को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा तुम ऐसे तो हमारा सारा ही लुटवा दोगे, तो तुम कुछ अपना सोचो। अब आप इमेजिन करिएगा जीवन की इस घटना को कि जब सारे सहारे छूटे हों तो जो सहारा होता ना वो भी सहारा नहीं रहता। अब यहां से इनके जीवन में सादगी थी, भक्ति भाव था बाल्यकाल से, लेकिन कुशाग्र बुद्धि बहुत थी, एकदम अलग से जिसको कहते हैं बुद्धि। तो इन्होंने वहां से हीरे का व्यापार प्रारंभ किया। हीरे, पन्ना, मोती, इस तरीके का व्यापार शुरू किया। कोई पुश्तैनी नहीं, कोई धन का सहयोग नहीं, पर बस ऊपर वाले की शायद कृपा थी और इन्होंने वो कार्य शुरू किया। और करने के साथ जिसको कहते हैं ना, कुछ लोगों को ऐसा आशीर्वाद होता है कि मिट्टी भी सोना बन जाए, तो इनका व्यापार इतना बढ़ता चला गया कि आज भी क्वीन विक्टोरिया के जो म्यूजियम है वहां पर बाबा के हाथ के बने हुए ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं। और इसकी पुष्टि तब हुई जब दादी की, बाबा की पुत्री निर्मल शांतामणि दादी, उनका भी इतिहास है इसी में। जब वो वहां पर गए तो वहां का एक रूल था किसी को कुछ बोलना नहीं है, नो कमेंट्स, क्योंकि वो पता नहीं कौन सी चीज कहां से आई हुई है, कौन सी चीज, तो कोई कमेंट्स नहीं। पर दादी ने जैसे उस ऑर्नामेंट को देखा तो देखते दादी भूल गई ये बात और वो बोल पड़े। तो जब बोले तो तुरंत वहां जो खड़े होते हैं उन्होंने पहचान लिया और पहचानते ये बात वहां तक पहुंची। तो यहां की जो क्वीन थी उन्होंने दादी को बुलवाया, वार्तालाप हुई और फिर पूछा कि अभी वो दादा हैं। इतनी यादाश्त में उनके भी ये बात थी। तो आप सोच के देखिए कि किस दर्जे से बाबा अपने दम पर, प्रभु के दम पर कहां तक पहुंचे कि राजाओं महाराजाओं में भी उनकी ऊंची पेंट थी। चाहे वो नेपाल के थे, चाहे वो उदयपुर के राजा थे, तब तक सभा नहीं शुरू करते थे जब तक कि बाबा ना आ जाए। तो उसके बाद में ये जो तस्वीर है ये वही हमने आपको जो घटना सुनाई है ये उसी की तस्वीर है। शायद ये वर्क नहीं कर रहा, भाई है नहीं। उसके बाद देख सकते हैं ये बाबा की 1920 के आसपास की तस्वीर है। एक रॉयल उच्च कोटि का बाबा का व्यक्तित्व था और ये बाबा की फैमिली है जिसमें बाबा के दो पुत्र, तीन पुत्रियां, पुत्र वधु, पोता पोती, सब भरपूर परिवार। और बाबा में जो दान की प्रवृत्ति थी तो बाबा सोना चांदी तक भी दान किया करते थे, हर तरीके का सबको सहयोग देना। पर उसके साथ साथ बाबा के अंदर भक्ति भाव बहुत था। तो घर में नियमित गीता का पाठ होता था। कभी कभी तो बाबा यात्रा पर भी होते थे, ट्रेन में भी होते थे, और वो जो समय उनका गीता का पाठ चल रहा है तो चाहे बीच में स्टेशन आ जाए, वो नेक्स्ट स्टेशन से वापस आना पड़े, पर बीच में नहीं छोड़ते थे। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी गहराई से बाबा का भगवान के प्रति और भगवान को पाने की जो चाहना थी। संजय भाई जी, जो परमात्मा को पाने की चाहना थी वो बहुत श्रेष्ठ थी। इसीलिए इस चित्र में आप कंप्लीट देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है बाबा को, जैसे उम्र बढ़ती गई बाबा का नारायण से, विष्णु जी से और घनिष्ठता बढ़ती चली गई। इवन बाबा की पॉकेट में भी विष्णु जी का चित्र होता था, गले में भी विष्णु जी का चित्र था। बाबा अच्छी अच्छी पार्टीज देते थे, बड़े बड़े अधिकारी और अंग्रेज भी आया करते थे, सिंधी परिवार भी आया करते थे उस समय के। लेकिन बाबा की एक खूबी थी, कौन सी? पार्टी में सादी, जो एक सात्विकता होती है उसको बाबा मेंटेन रखते थे। कभी कभी कोई हंसी में कह भी जाते थे कि लखी बाबू पार्टी थोड़ी फीकी रह गई। समझ गए होंगे आप सब, कैसे समझे, तजुर्बे से या वैसे? तो बाबा बड़े हंस के कह देते थे कि हाँ, बस इतना कह करके बाबा फारिग कर देते थे। पर बाबा अपनी सात्विकता को कभी भी नहीं छोड़ा। इसमें आप देख सकते हैं कि बाबा का गुरुओं के प्रति बहुत निष्ठा थी। बाबा के जीवन में 12 गुरु, एक फिर दूसरे फिर तीसरे, सिर्फ प्रभु की प्राप्ति की ललक। एक तरफ व्यवसाय उच्च कोटि का, एक तरफ समाज में जो मिलनसारिता है वो उच्च कोटि की थी, एक तरफ अपने परिवार में अपने बच्चों को बहुत समय देना। कभी बाबा ने अपने बच्चों को डांटा नहीं, कभी उनको एक थप्पड़ भी नहीं लगाया, कभी भी नहीं। इतना प्रेम रखते थे बच्चों से भी, लेकिन उतना ही भगवान के प्रति भी प्रेम था। और हर महीने एक गुरु का घर में सत्संग जरूर होता था। हर साल, साल में 12 महीने 12 गुरु और सत्संग चलता। और बाबा का परिवार की जो लिविंग था वो सिंपल भी और हाई थिंकिंग भी थी। और इसके साथ साथ बाबा की राजाओं महाराजाओं से लेन देन, ये पूरी जीवन गाथा इस चित्र के अंदर आप स्पष्ट देख सकते हैं। एक छोटा सा इवेंट सुनाती हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज्वेलर्स जो होते हैं वो बाबा के पास आते थे काम लेने। कैसे? बाबा हीरे और जड़त बताते थे कि इस ज्वेलरी को ऐसे सेट करना और ऐसे बना के देना। बाबा सुनार पने का कार्य नहीं करते थे, वो केवल हीरे और जवाहरात का। तो एक बार एक पार्टी आई हुई थी, एक व्यापारी आया हुआ था और उनके साथ 2 बच्चे भी थे। छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, साथ होते हैं। तो बाबा उनसे बात करते रहे, बात करके काम दे दिया और वो फिर चले गए। जाने के बाद ऐसे ही दूसरी पार्टी से बात करनी थी, तो जब बात कर रहे थे तब देखा कि एक पर्ची, चिटकी माना, छोटी सी, एक लिफाफा नहीं है, छोटा सा लिफाफा। अब हीरे की तो आप कीमत समझ सकते हैं, छोटे छोटे हीरे थे। तो बाबा ने दिमाग लगाया कि वो पर्ची कहां जा सकती है। तो तब बाबा को ध्यान आया कि बच्चे आए थे, मे बी। अब आप क्या करेंगे? हाँ बताइए, और क्या करेंगे? सीधा पूछेंगे, जाएंगे। बाबा का स्टाइल देखो कितना वंडरफुल था। बाबा मिठाई का डिब्बा लेकर के उस सुनार भाई के घर गए। तो वो तो एकदम हक्का बक्का, क्योंकि बाबा बहुत हाई लेवल के थे। उस जमाने में बाबा के घर में फोन था, उस समय बाबा के घर पे गाड़ी थी, आप सोच के देखें। उस समय पर कोठी बंगला जो कहते हैं ना हाई लेवल के, तो उनको बड़ा लगा कि आज बाबा और मेरे घर, तो वो एकदम सकपक आ गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है साहब, मैं आपके ना बच्चे आए थे, उनको कुछ दे नहीं सका, तो आप मुझे बच्चों को बुलाओ। तो उन्होंने कहा रे बच्चों तुम्हें बाबा बुला मिलने आए हैं, चलो। तो वो जब तक पानी वानी देने गए, बाबा ने बोले तुम्हारे लिए हम मिठाई लाए हैं, तो बच्चों को क्या चाहिए। तो एक बच्चा जो पहले आया था, बाबा ने बड़े प्यार से पूछा, आप वहां से एक ऐसी छोटी सी पर्ची लाए हो, छोटी सी जिसमें कुछ थे। तो बोले हाँ बाबा कंचे थे, छोटे वाले बच्चे थे ना, कुछ चोरी के भाव से नहीं लाए थे। तो बोले बच्चे कहाँ है वो। बोले वो बड़े वाला भाई लाया था और वो ऊपर रखे हैं। तो बाबा ने कहा आप लेके आओगे। बोले और तो क्या, ये है बाबा की कुशाग्र बुद्धि। कार्य भी हुआ, बच्चों को खाने को भी मिला, उनको भी प्रेम भाव हुआ, और फिर बाबा ने जाते जाते शिक्षा भी दी कि बच्चे कभी भी कहीं से भी कोई चीज अपने आप नहीं उठा कर लाते, मांग कर ले सकते हैं पर अपने आप नहीं उठाना। कितना सरल रीति से कार्य को संपन्न किया। क्यों? क्योंकि वो यहां पर डिस्टर्बेंस नहीं थी। हमारे क्या होता है, जरा भी कुछ होगा तो यहां से डिस्टर्बेंस प्रारंभ हो जाती है। बाबा बिल्कुल कूल एंड काम और इजी, ये ऐसे उच्च कोटि का बाबा का जीवन था। कितने रॉयल, कितना हाई लेवल की पर्सनालिटी बाबा की थी। पर 1900 जब वो 60 वर्ष की उम्र के आसपास आए, तो उनकी जो धर्म पत्नी थी यशोदा माता जिन्हें हम कहते, उन्होंने एक बार बाबा से कहा था कि बाबा बहुत कमा लिया और लगभग सब बच्चों को सेट भी कर दिया, अब 60 वर्ष की उम्र आ रही है, क्यों ना हम सन्यास लें, थोड़ा परिवर्तन करें। तो बाबा ने पता है क्या कहा, वैसे भक्ति भाव में बहुत श्रेष्ठ थे, पर बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि बस जितना कमाया है ना उतना और कमा लें, फिर हम सन्यास जरूर करेंगे। पर कहते हैं होना वो है जो वो चाहता है। उसके बाद एक बार की बात है कि बाबा बॉम्बे में गए हुए थे, सिंध हैदराबाद निवास था, कलकत्ता में उनका व्यापार था और पूरे भारत में उनका आना जाना अनेक स्थानों पे था। बाबा बॉम्बे में आए हुए थे और उस दौरान बाबा अपने एक मित्र के घर में थे, वो भी बहुत सात्विक और श्रेष्ठ विचारों वाला, क्योंकि बाबा ऐसे तो किसी स्थान पर जाएंगे नहीं। वहां उस दिन बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। अब साक्षात्कार तक तो चलो ठीक है, पर उस साक्षात्कार के साथ एक आवाज आई, वो आवाज थी अहम विष्णु चतुर्भुजम, इट्स ओके कि मैं विष्णु चतुर्भुजधारी हूं, पर अगला शब्द बहुत गहरा था, तत्वत्वम। जो संस्कृत जानते हैं उसका अर्थ समझ रहे होंगे कि ये तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम्हें ऐसा बनना है। अब बाबा को दो बातें आई कि या तो मेरे गुरु की कृपा है जिनकी वजह से मुझे ये साक्षात्कार, क्योंकि मैं विष्णु का भक्त हूं, पर ये तत्वत्वम वाली बात कैसे है। यहां थोड़ा बाबा कंफ्यूज थे। बाबा अपने गुरु के पास गए, पर उस समय के गुरु बहुत ही उनके जो गुरु थे श्रेष्ठ और सत्य, उन्होंने कहा, बोला लखी बाबू मेरे को ही अभी तक कभी ऐसा कुछ दृष्टांत नहीं हुआ, ये मेरी कृपा नहीं है, ये साक्षात प्रभु की तुम पर कृपा हुई है। अब यहां से बाबा का टर्निंग पॉइंट प्रारंभ हुआ। इसके बाद बाबा कलकत्ता पहुंचे, बनारस पहुंचे सेकेंड नंबर पर। तो जब बनारस में एक दिन बाबा अपने कक्ष में थे, रात्रि का सा समय था, अचानक बाबा का मन ऐसा हुआ, क्योंकि चेंजेस तो आने लग गए थे, बाबा अपने रूम से बाहर गार्डन की तरफ गए और तभी एक दूसरा साक्षात्कार बाबा को हुआ। और वो साक्षात्कार था इस दुनिया के महाभारी विनाश का, जो भावी होने वाला। एक तरफ एटॉमिक बम्स, एक तरफ ग्रह युद्ध और एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं। आप इमेजिन करिए, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक बच्चे को डांट तक ना लगाई हो, इतने कोमल हृदय के धनी, और वो बाबा एकदम रक्त की नदियां बह रही, एकदम महाविनाश। और आप और दूसरा देखें, प्रथम और द्वितीय जो विश्व युद्ध की बात थी, हिरोशिमा नागासाकी जो बम डला, उसकी भी नींव लगभग उस दौर में ही उसके बाद तैयार हुई। एक तरफ दुनिया के विनाश की तैयारी का संकल्पना और एक तरफ बाबा को साक्षात्कार, और बाबा की अश्रुधारा बह रही, और बाबा बड़े उससे कह रहे, प्रभु बस करो बस करो, क्योंकि बाबा बहुत कोमल हृदय के। अब बाबा में वैराग्य शुरू हो गया, क्योंकि ये उनके खुद की व्यक्तिगत नहीं, अब ये कोई और ऊपर की ईश्वरीय कृपा का कार्य चल रहा था। बाबा कलकत्ता अपने व्यापार में वापस गद्दी पर आए, आप अब बाबा को वो हीरे हीरे नहीं नजर आ रहे थे। बाबा को तो बिल्कुल मन विरक्त, क्योंकि उन्होंने आने वाली दुनिया के महाविनाश को अपने इन ओपन आईज से, जिसको हम कैसे कहते हैं कि साक्षात्कार के माध्यम से, दिव्य दृष्टि से देखा, बाबा में एकदम परिवर्तन। बाबा ने अपने पार्टनर को बड़े प्रेम से कहा, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो। आज आप ये सोचें, हम किसी बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हों, कितनी बार बारीकियों से देखेंगे, कहीं कोई मेरे साथ, बोलिएगा अच्छे से, बोलिएगा, सभी सीधे होके बैठिएगा, एक बार थोड़ा सा उठ जाइएगा, है ना, लगता है ना कि कहीं कोई मेरे साथ छल ना कर दे, धोखा ना कर दे। फिर भी हम कहते हैं, मैंने तो इतना किया, इसमें ऐसा हुआ। बाबा ने बड़े प्रेम से उस भागी को, दार को कहा, तुम्हें जो लेना है वो तुम ले लो। उसने पूछा कि बाबा कोई मेरे से गलती हुई है क्या? बाबा ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, अब मैं ये कार्य ज्यादा नहीं कर सकता। उसने पैसा लेना चाहा, और जो सामान था, कहा कि क्योंकि मुझे भी इसका ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं तो केवल संभालता था, पार्टनर ने कहा। तो बाबा ने वहां से इसका परिवर्तन प्रारंभ किया, वाइंड अप करके। तभी इनके चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बाबा ने कहा, एक दो सुंदर लाइन लिख करके अपने घर सिंध लेटर डाला, अल्लाह को अल्लाह मिला, अल्लाह को खुद अपने लिए कह रहे हैं, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। बे मींस पार्टनर, पार्टनर को जो दुनिया की बादशाही चाहिए थी वो दे दी, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अल्लाह की हुआ रेल का राही, क्योंकि उनके चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बाबा को खबर मिली और बाबा तुरंत ये मैसेज देके वहां पहुंच गए। अब घर के जब उस पत्र को पढ़े तो आप बताइए क्या समझेंगे, एक साधारण मनुष्य क्या समझ सकते हैं, सब में एक अलग खलबली मची कि ये क्या हो रहा है बाबा को। पर बाबा ने क्योंकि विनाश का दृश्य देखा था, वो एकदम बाबा के जहन में चला गया कि ये क्या चीज है, ये क्या होने वाला है, इस दुनिया का कैसे विनाश ऐसे होगा। उसके बाद बाबा को एक तीसरा साक्षात्कार और हुआ, बहुत सुंदर, ये कल्पना नहीं है, हकीकत है जो बाबा को दिखाई दी, डिवाइन इनसाइट। बाबा ने देखा कि आसमान से, खुली आंखों से देखा, आसमान से तारे नीचे आते हैं, कोई शहजादा कोई शहजादी, माना एक नई स्वर्णिम दुनिया। तो ये तो नितांत सत्य है, संसार परिवर्तन का ही नाम है, परिवर्तन होता रहता है। अगर अभी बहुत बुरा दौर है तो अच्छा भी था और अच्छा भी आएगा, पर साथ में फिर हर उसमें एक शब्द आता था बाबा के लिए कि ऐसी दुनिया के निर्माण का कार्य तुम्हें करना है। हाउ कैन इट पॉसिबल। बाबा के अब एक और गहरा चिंतन होने लगा कि मैं एक इंसान, मैं कैसे पूरे विश्व का परिवर्तन कर सकता हूं। यहां बाबा में परिवर्तन और चिंतन तेज हो गया। बाबा गीता पाठ पहले भी करते थे, बाबा गीता पाठ अब भी करते थे, पर अब जब गीता पाठ करते थे तो जो सामने आते थे ना, अब एक और इतिहास देखिएगा, जिस पर बाबा की दृष्टि पड़ती थी वो भी ध्यान में चला जाता था, उनको भी अपने अपने इष्ट देव का साक्षात्कार होता था, जिसकी जिसमें भावना होती थी, श्री कृष्ण के भक्त को श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं, राम जी के भक्त को राम जी नजर आ रहे हैं, जो जिसमें आस्था रखता। तो अब ये बात वहां सिंध हैदराबाद में चारों ओर फैलने लगी, धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, लोग आते गए और बाबा का ज्ञान देने का, गीता पाठ का प्रचार बढ़ता चला गया। अब एक और चौथा दृश्य सबसे वंडरफुल, क्योंकि बाबा को अब तक समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये घटना क्या घट रही है। आप एक साधारण मनुष्य के नाते ही तो थे, वो भी घर परिवार वाले, बाल बच्चों वाले, तो उनको यही नहीं समझ आ रहा था ये घटना क्या घट रही है। तब कहते हैं, एक बार की बात है, सत्संग चल रहा था, बाबा कभी सत्संग से नहीं उठे, कभी नहीं। आज पता नहीं बाबा के मन में क्या आया, ऐसी विरक्ति, और बाबा उठ के अपने कक्ष में चले गए। उनकी पुत्र वधू भी बैठी थी, धर्म पत्नी भी बैठी थी, और रिश्तेदार भी, पड़ोसी भी, जो कथा सुनते थे सब बैठे थे। तो आज सबको एक क्वेश्चन आया कि आज बाबा उठ के कैसे गए, जो जीवन काल में कभी नहीं ऐसा हो सकता था। तो धर्म पत्नी ने पुत्र वधू को इशारा किया कि जाके देखो। जब वो गए तो कक्ष में देखा, एकदम लाल प्रकाश, बाबा के चेहरे से एकदम अलग तेज, और बाबा को वो महाज्योति मानो अपना परिचय दिया, अहम, कि मैं प्रकाश स्वरूप, शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम, शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम, शिवोहम शिवोहम। और बाबा के मुख से वो वचन निकल रहे हैं कि वो महाज्योति जिन्हें परमपिता परमात्मा कहते, उनके द्वारा ये सारा कार्य हो रहा है और उन्होंने इनको अपना माध्यम बनाया। अब आप में से बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होगा, और जो अक्सर होना एक लाजमी भी है, कि इनको ही क्यों बनाया। ओके, आपने ग्रीन टी शर्ट क्यों पहनी है? क्यों पहनी है? बिकॉज इट्स योर चॉइस. मैंने व्हाइट क्यों पहनी है? बिकॉज इट्स माई ओन चॉइस, ये मेरी पसंद है. तो हम भगवान की चॉइस के ऊपर क्वेश्चन मार्क कैसे लगा सकते हैं? अच्छा चलो भगवान इनको ना चुन के इनको चुन लेते, आपको चुन लेते या किसी और को चुन लेते, तो भी तो यही प्रश्न आता कि इनको क्यों चुना है, इनकी चॉइस क्यों की है. तो ये तो ऊपर वाले की चॉइस थी, क्योंकि उन आत्मा में अनुभव था, संसार का भी, गृहस्थ का भी, भक्ति का भी, परमात्म चाहना का भी, हर तरीके की तजुर्बा लिए हुए 60 वर्ष की आयु का एक अच्छे अनुभवी आत्मा. शायद परमात्मा को वही पसंद थे और यहां से इस यात्रा का परिवर्तन हुआ. और जब प्रारंभ हुआ था तो ओम की ध्वनि से हुआ था. बस ऐसे सब बैठते थे, ओम की ध्वनि लगाते थे और उस ध्वनि के साथ साथ ध्यान में चले जाते थे. एकदम घंटों बीत जाता था. अभी तो हम ओम की ध्वनि तो अब भी करते हैं, पर अब हम मुख से करते हैं. वो मुख के साथ साथ मन की ध्वनि, दिल की ध्वनि थी, जो सब खो जाते थे. सबको अच्छा लगता था, भीड़ की भीड़ आने लगी. पर अब क्योंकि एक संस्थान की जड़ रखनी है, नींव रखनी है, तो बाबा ने, माना उस आलमाइटी परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के श्री मुख के द्वारा कुछ नियम जीवन के, कुछ कायदे जीवन के बताने प्रारंभ किए. जैसे शुद्ध भोजन, आप समझ सकते हैं सिंध हैदराबाद का उस जमाने का भोजन तो स्वाभाविक है, उस कम्युनिटी में तो सब चलता था. तो बाबा ने शुद्ध भोजन की बात प्रारंभ की, पवित्र जीवन की बात प्रारंभ की, हमें सादगी की बात प्रारंभ की. तो बाकी सब तो अच्छा लगता था, पर जब ये नियमों की बात आने लगी तो स्वाभाविक है घरों में आपस में थोड़ा सा डिस्प्यूट चालू हुआ. तो जब डिस्प्यूट चालू हुआ तो लोगों में कुछ एंटी ग्रुप भी बना, जिसे एंटी ओम मंडली कहा. आप एक छोटा सा दृश्य देख सकते हैं जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सुबह घूमने के लिए गए हुए थे, जब वहां पर रहने लग गए थे तो जब वापस आए तो जो दूसरा ग्रुप था वो गेट के आगे खड़े हो गए. बहुत सुंदर दृश्य है ये, वृतांत है, ध्यान से सुनिएगा. फिर उसमें क्या हुआ, जब वो आगे खड़े हो गए, किसी को अंदर नहीं जाने देंगे, तो बड़े तो खड़े रहे, बच्चे भी थे, कोई 6 वर्ष के, कोई 8 वर्ष के, कोई और छोटे, कोई ऐसे, आप तस्वीर में देख रहे हैं. तो उनको थोड़ी थोड़ी, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, धूप बढ़ती गई, उनको थोड़ा मन में दया भाव आने लगा. बोले बच्चों तुम पानी तो पी लो. तो बोला नहीं, हमारे बड़े पिएंगे तो हम पिएंगे. अब ये तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी ना, किसी को नहीं पता था कि आज कुछ होने वाला है. ये विल पावर थी उनकी, क्योंकि उनके अंदर का जो भक्ति भाव था, बच्चों का भी वो परमात्म मिलन का जो भाव था, उन्होंने कहा अच्छा बिस्किट तो खा लो. बोला नहीं, लास्ट में जो विरोध कर रहे थे उनको वापस जाना पड़ा ताकि वो सब अंदर आ सके. इस तरीके का ये वहां का ही एक दृश्य है. फिर बाबा कराची में शिफ्ट हुए और हमारे यहां की फर्स्ट चीफ ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज जगदम्बा सरस्वती, मात्र 18 वर्ष की एक बच्ची, ऐसे ही आने वालों में से संसार का पहला एक संस्थान है. मैं बड़े गर्व से ये बात कहती हूं, अन्यथा गुरु का बच्चा, बोलिएगा जोर से बोलिए, नेचुरल है ना, पद उस सीट पर कौन बैठता है, गुरु का बच्चा गुरु बनता है. लेकिन बाबा का इस यज्ञ के अंदर, हम यज्ञ बार बार शब्द इसलिए प्रयोग करते हैं, जिसमें सर्वस्व स्वाहा किया बाबा ने, 5 बहनों की कमेटी बना करके, बकायदा लिखत दे करके, सरकारी वकील से बाबा ने कहा पता नहीं इस दिल का कब बदलना जाए. सर्वस्व स्वाहा करके आप जगदम्बा सरस्वती की उपस्थिति में पांच बहनों की कमेटी में ओम मंडली के नाम से इस संस्थान की शुरुआत की और अपना सर्वस्व लिख करके दे करके कि आज से ये सब कुछ ओम मंडली का है। उस जमाने में करोड़ों की संपत्ति थी। एक मिनट के लिए उसी ओम का अभ्यास करते हैं। सभी सीधे बैठे, सभी आवाज से बोले, छोटा सा इस तरह से एक लंबी धुन चला करती थी और इनका नाम ओम राधे रखा गया। फिर तो बोर्डिंग बना, बोर्डिंग में छोटी बड़ी सब बहनें थी, वहां पर सब छोटे बच्चों को उसे लेकर के सारी तरह की शिक्षा दी गई। ये कराची के भवन का दृश्य है और वहां पर ये जो बीच में खड़ी हैं टीचर, ये हमारी चंद्रमणि दादी जी थे। फिर भारत जब डिवाइड हुआ, दो पार्ट में बटा, तब तक ये वहीं रहे। और आप यकीन माने, जो ट्रेन भर के लाशों से आई थी, सबको मालूम है, इतिहास गवाह है, वही हमारे मुस्लिम भाई इस संस्थान के चारों ओर खड़े होकर के पहरा देते थे। किस लिए? इनके बचाव के लिए, क्योंकि ये आल माइटी परमात्मा का कार्य था। 50 तक ये वहीं रहे, 14 वर्ष एकमात्र कार्य केवल साधना साधना और साधना। इसके बाद में 1950 में इस माउंट आबू में ये ट्रांसफर होकर के यहां आए थे। ये वहां का दृश्य है, कराची एयरपोर्ट, ये समुद्री जहाज से सामान सब लोड करके हमारी पुरानी दादियां देख सकते हैं आप। और ये फिर भारत के ओखा में आए बंदरगाह से, फिर ट्रेन से आबू रोड में आए और यहां पर सबसे पहले ब्रिज कोठी में अपना स्थानांतरण किया था। ये सब दृश्य, अब ये जो दृश्य है वो आप पांडव भवन जो कल गए थे, ये वो स्थान है। और किस स्वरूप में था आप देख सकते हैं। बाबा ने सब कार्य स्वयं करके, क्योंकि रिसोर्स तो अब थे ही नहीं, 14 वर्ष बैठ के जहां एक ही परिवार में 400 लोगों ने खाया हो सुबह दोपहर शाम, तो स्वाभाविक है, कहते हैं कुएं भी खुट जाते हैं। तो धीरे धीरे बिल्कुल लेस रिसोर्सेस पे भी सबने मिलकर के कार्य किया। बाबा देखो जूता चप्पल भी बना रहे हैं, गार्डनरिंग खेती भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, बाबा ने बैल भी चलाए, गाड़ी चलाई हुई है, अब सब अनाज बैठ के साफ कर रहे हैं, बाबा बड़ई का काम भी कर रहे हैं, माना हर काम खुद करके सिखलाना। आज क्या है, हम बोल करके सिखला रहे हैं। ये सारा कार्य आप देख सकते हैं किस तरीके से। फिर 1950 के बाद भारत में अनेक स्थानों पर सेवाएं प्रारंभ हुई, अनेक स्थानों पर जा जा करके भाई बहनों ने सेवाएं की। और ये जो फर्स्ट डे आपने हमारे इस संस्थान के प्रेजेंट सबसे मुख्य वरिष्ठ भाई निर्वैर भाई जी का तस्वीर है, ये आप बाबा के साथ में देख सकते हैं। डॉक्टर निर्मला बहन है जो इस समय यहाँ पर सारा ज्ञान सरोवर संचालन करती हैं। बाबा पत्थर की शिला पर लेटे भी ध्यान से देखिएगा, विष्णु जैसी निश्चिंत अवस्था है। सबसे मिलना, क्लास कराना, और बाबा ने अपने जीवन के अंतिम दिन 1969 के लास्ट दिन भी पत्र व्यवहार का जवाब भी पूरा दिया। एक 92 इयर्स का बुजुर्ग, कराची का मौसम और यहां की सर्दी समझ सकते हैं, टोटली ओपोजिट, हर तरीके से ओपोजिट और हर तरीके की परिस्थितियों का सामना करना, धन का भी अभाव, स्वास्थ्य का भी अभाव, सबको एक दूसरे से इस तरीके का परिवर्तन आने लगा, पर बाबा की स्थिति एज इट इज थी। और लास्ट 1969 को बाबा ने ये अपनी पुरानी देह त्यागी और आपने देखा था वहां पर जो शांति स्तंभ था वहां पर बाबा को मुखाग्नि दी गई, जिसमें तीन दिन बाबा की देह को रखा गया। और फिर 21 जनवरी 1969 को बाबा को मुखाग्नि देके घर की सब साफ सफाई करके, और फिर बाबा को जब भोग लगाया गया तो भोग लगाने जब दादी गुलजार जी, जो कि एक संदेश पुत्री के नाम से जानी जाती थी, तब फिर वो महाज्योति पुनः उनके द्वारा आगे का कार्य करवाया। अब बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मुरली की हम बात कर रहे थे, वो मुरली जो बाबा शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मुख से शब्द दर्ज शब्द जो वचन उच्चारे, उसे उस समय जो लिखा गया और रिकॉर्ड किया गया, टाइप किया गया, वो आज तक हम वही शब्दों को पुनः पुनः दोहराते हैं। और ये हमारे लास्ट के 5 इयर्स का 64-65 से लेकर 69 के संग्रह है, जो पुनः पुनः रिवाइज होता है हर 5 वर्ष के अंदर, जिसे हम मुरली कहते हैं। परमात्मा के वचन, प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से, मुंह से जो ओरली बोले गए, कोई और माध्यम कुछ भी साथ नहीं लिया गया, उन शब्दों को हम मुरली कहते हैं। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? क्लियर हुआ? अब आप मुरली को थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिएगा। इसमें स्टार्टिंग जो होती है वो ओम शांति से होती है। ओम का अर्थ आप सबको कई बार यहां बताया है, मैं वो हूं। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। और आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप शांति है। पानी का ओरिजिनल स्वभाव शीतलता है। अग्नि का ओरिजिनल स्वभाव, अग्नि है, तपत है। अगर अग्नि पर रखा देगचा गर्म नहीं हो रहा, वो अग्नि नहीं है, उसका स्वभाव है। वायु का अपना एक स्वभाव है, इसीलिए आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव ही शांति है। हम शांति के लिए ढूंढ रहे हैं, जबकि वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देख करके आगे चलते हैं। आप दो मित्र हैं, दो भाई हैं, आपस में तू तू मैं हो गई, ठीक है, हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, जोर जोर से हो गई, खूब हो गई। लास्ट लास्ट टू लास्ट क्या करोगे? लास्ट टू लास्ट एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा, कितना, कितनी देर तक? फिर क्या कहोगे कि मुझे अकेला, जोर से बोलिएगा, अब मुझे थोड़ी देर शांति से अकेला छोड़ दो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही शांति है। इसीलिए बाबा ने, परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा पहली चीज हमें अपने स्वरूप की और अपने स्वमान की स्थिति दिलाई और कहा कि तुम एक आत्मा हो, देह के नाते देह के पिता और आत्मा के नाते परम पिता। उस परम आत्मा ने कहा तुम एक आत्मा हो। ब्रह्मा बाबा ने कभी खुद को गुरु नहीं कहा। बाबा ने कहा मैं भी तुम्हारी तरह एक सुनने वाला स्टूडेंट हूं, मैं भी एक विद्यार्थी हूं, केवल मैं माध्यम हूं। क्योंकि माध्यम कोई एक ही होगा ना, सब तो माध्यम नहीं बन सकते। वो केवल माध्यम बने, पर जैसे हम मुरली सुनते थे या उस समय के जो बैठने वाले सुनते थे, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा खुद भी अपने कानों से कई बार मुरली में उच्चारण होता है कि सबसे पहले ब्रह्मा बाबा सुनते हैं, इसके कान सुनते हैं, क्योंकि सबसे मुंह के नजदीक यही वाले कान थे ना। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, शिव बाबा उनके मुख से, तो ब्रह्मा बाबा के ही कान सुनते। फिर जब मुरली का प्रारंभ होता है तो उसमें एक शब्द आता है मीठे बच्चे। कोई इंसान आपस में एक दूसरे को नहीं कह सकता, ये परमात्मा ही हम आत्माओं को स्वमान के साथ कहते हैं कि तुम मेरे मीठे बच्चे हो। अपने अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा हम मीठे हैं, बोलिएगा पक्की बात। किधर से आवाज आई थी? पक्की बात, कभी गुस्सा नहीं आता, कभी कड़वे नहीं होते, होते हैं या नहीं? बोलिएगा बोलिएगा, हाँ ना, कुछ तो बोलिए, होते मीठे तो 100% नहीं है, फिर भी यस यस, ओरिजिन तो हमारा स्वीटनेस ही है। तो आपके बच्चों का ओरिजिन क्या है? फिर आप कभी उनको प्यार से मीठे बच्चे कहते हो, है ना? हम अपने बच्चों के लिए क्या क्या कहते हैं, जबकि उस परमात्मा की तुलना में तो हमारे में भी तो कितनी कमियां हैं। फिर भी भगवान ने हमारी कमियों को ना देखकर हमारे गुणों को देखा और कहा मीठे बच्चे। तो मीठे बच्चे कह के उन्होंने हम कड़वे जैसे करेले बच्चों को भी मीठा बना दिया। तो अगर हम इस चीज को ही केवल फॉलो कर लें तो क्या हम नहीं बदल सकते? हम भी बदल सकते हैं। फिर मुरली के अंदर एक शब्द आता है बाप दादा, इसमें बार बार शब्द का प्रयोग होता है। यहां पर बाप माना पिता, जैसे पिता कहता है ना मैं तेरा बाप हूं, मुझे भी पता है, तो वो अपने आप तो कह सकता है, पर बच्चा पिता को नहीं कहता तू मेरा बाप है, वो क्या कहता है तुम मेरे पिताजी हो। तो शिव बाबा खुद अपने लिए बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता और ये तुम्हारा बड़ा भाई दादा। सिंधी में बड़े भाई को दादा कहते हैं और बहुत सारी भाषाओं में बड़े भाई को दादा कहते हैं, इसलिए ये शब्द प्रयोग होता है बार बार बाप दादा। फिर जब मुरली शुरू होती है उसमें पहले एक आता है सार। सार माने जो पूरा चार पेज की ये मुरली है उसमें क्या बात मुख्य है। जैसे हमने एक रेंडमली कोई एक मुरली उठा के लाए हैं और उसका आपको सुनाते हैं। ओम शांति, मीठे बच्चे तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है। अब यहां माया क्या है? धन नहीं, दुनिया में तो माया आज के समय धन को कहते हैं, लेकिन यहां माया हमारे अपने बुरे या कमजोर या विकारी संस्कारों को माया बताया गया है। पांच विकार है ना, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, जो भी है ये पांच विकार ही माया के रूप है। अर्थात हमारे पर सबके ऊपर पूरा पैरा है या नहीं है? अभी एक बंदे को कह दिया जाए भाई उठियो यहां से, यहां नहीं, यहां तो सब शिष्टाचार वो प्रभाव में है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाएं कोई ऐसे बात हो जाए तुरंत आएगा क्यों, तो ये क्या आया, क्रोध आया, कहीं दूसरे का देखा ज्यादा तो लोभ आया, कहीं अपने वाले से आंख मिलाई किसी को आंख दिखाई मोह आया, अहम का तो पूछना ही क्या, उस शीशे की तरह कब तिड़कता रहता है कि नहीं है। तो हम सब के ऊपर किसका पहरा है? माया का पहरा है। और बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, थोड़ा मोड़ा भी नहीं, पक्के वाला। इसलिए फिर क्या करें, है तो है छोड़ दें, की करिए दसो की करिए। माया का पूरा पहरा है, इसलिए जरा भी गफलत ना करो। जरा भी ऐसा हुआ तो वही वो अपना असर दिखा देगी, इसलिए पूरा सावधान रहना है अगर मंजिल तक पहुंचना है तो। ये किसके वचन है? परमात्मा शिव बाबा के, माध्यम ब्रह्मा बाबा के, उनके श्री मुख से उच्चारे हुए शब्द दर शब्द वचन है। आगे कहा है देही अभिमानी, इस शब्द को समझ सकते कोई? इसका अर्थ बताएं जो अननोन है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, बताना चाहेंगे? एक होता है देह अभिमान, माना बॉडी कॉन्शियसनेस, मैपन। देह को चलाने वाली कौन है? रथ को चलाने वाला रथी, देह को चलाने वाली देही आत्मा। उसके स्वमान में रहो, तो स्वाभाविक है जब आत्मा के स्वमान में रहेंगे तो आत्मा की प्रॉपर्टीज जागृत होंगी, और जब देह के भान में होंगे तो देह की प्रॉपर्टी क्या है, मेरा तेरा इसका उसका, ये जागृत होगा। इसलिए बाबा ने गफलत ना करने का सबसे अच्छा तरीका बताया देही अभिमानी होकर रहना। फिर इसमें प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न आता है अक्सर करके, और इस मुरली का प्रश्न है कि शिव बाबा के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? वैसे तो वो तो अनंत है, अवडर दानी है, सब भंडारे भरपूर है, पर हमारी दृष्टि कहां तक जाती है? कौन से भंडारे? अन्न के, जल के, मान के, सम्मान के, या इससे भी कोई और बड़ी चीज है? देखिए सुनिएगा, उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? तो उत्तर में आया कि शिव बाबा के पास, आलमाइटी परमात्मा के पास, बताइए कौन सा भंडारा होगा? पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा है। अब आप ये बताएं, जिसके जीवन में सुख होगा, जिसके जीवन में शांति होगी, जिसके जीवन में पवित्रता होगी, उसके बाकी भंडारे भरपूर नहीं हो जाएंगे? वो तो बाकी चीजें तो स्वतः खुद चल के आ जाएंगी जहां पर पवित्रता है, सुख है और शांति है। स्थाई सुख माने परमानेंट सुख। आज क्या है, एक साधन आता है सुख मिलता है, एक चीज आती है सुख मिलता है, एक सेट बहनों को मिल गया सुख मिलता है, पता चले साथ वाले को बड़ा वाला सेट मिल गया, हमारी गाड़ी आई हम बहुत खुश हुए, हमारा इंक्रीमेंट हुआ बहुत खुश हुए, पता चला सेम पोस्ट वाले का 500 रुपए ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया। तो स्थाई सुख नहीं है ना ये, तो बाबा कह रहे स्थाई सुख व शांति चाहिए तो क्या करें? कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, पवित्रता को अपनाना, पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। कभी कभी मुरली में आता था जननी है, जननी समझते, जन्म देने वाली, हम सुख चाहते हैं, हम शांति भी चाहते हैं, पर पवित्रता अपनाने को, तो वो उसकी जननी है, आधार है। पवित्र बनो माना मन को शुद्ध करो, जीवन को शुद्ध बनाए, तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, बाबा भगवान अपना धाम छोड़कर आते ही हैं। किस लिए? बच्चों को पवित्र बनाने। क्यों पवित्र बनाना चाहते? बस एक बार बताएं फिर पूरा करेंगे। क्यों पवित्र बनाना चाहते हैं बाबा जी? क्योंकि वो खुद एवर प्योर है। मुझे अगर इंग्लिश आती है तो मैं आपको इंग्लिश में बात करना पसंद करूंगी कि आप भी मेरे से वैसे ही बात करें। मुझे हिंदी आती है तो मैं सोचूंगी आप मेरे से हिंदी में बात करें। परमात्मा एवर प्योर है। क्यों एवर प्योर है? क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते। अब हम तो आते हैं, इसलिए हम आत्मा के ऊपर मैल चढ़ते 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 बिल्कुल मैली बन जाती है, तब परमात्मा आकर के वो पवित्रता का हमें पाठ पढ़ाते। क्यों? क्योंकि वापस जो जाना है उस पवित्र दुनिया में ही जाना है। अब जब पुरानी जो मुरलियां हुआ करती थी उसमें आजकल की तरह इतने बढ़िया बढ़िया गीत नहीं थे, ना कोई गीतकार इतने हमारे पास कनेक्शन। अब तो बहुत हजारों गीत है, आप ब्रह्मा कुमारी इसके रोज सुनते होंगे ना, एक से एक नया सॉन्ग आता है और सभी सॉन्ग आपको अच्छे लगते होंगे। लेकिन उस समय तो यही जो भक्ति के या दुनिया के जो अच्छे गीत थे उनमें से कोई एक गीत चला करके फिर उसके ऊपर बाबा एक्सप्लेन करते थे। जैसे इस मुरली में एक गीत आया है, ना वह हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। ये फिल्मी एक सॉन्ग है लेकिन इसका मीनिंग बहुत वंडरफुल है। वो चाहे किसी अर्थ में ले, बाबा कहते हैं हम बच्चे कह रहे हैं कि शिव बाबा से हम कभी, परमात्मा से हम कभी जुदा हो ही नहीं सकते और ना उनकी याद हमारे दिल से निकल सकती है। निकल सकती? एक छोटी सी मुझे लाइन याद आती है, कौन कहता है कि खुदा दिखाई देता है? देखा है किसी ने? कौन कहता है कि खुदा दिखाई देता है? देखा या नहीं, फटाफट बताइए। जब कुछ नहीं दिखाई देता तो, जब कुछ नहीं दिखाई देता तो खुदा ही दिखाई देता है। तो देखा तो सबने है, अपने पिता को किसने नहीं देखा होगा? मन की आंखों से भी देखा होगा, जीवन में अनुभव से भी देखा होगा, आगे भी पता नहीं कितनी बार हमने देखा कि पता नहीं किस रूप में प्रभु आए और मेरा सब ये काम करके चले गए। तो स्वाभाविक है हम सब ने देखा है, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं, अर्थात नियमितता नहीं रह पाती। तो मुरली वो जादू की पुड़िया है, आप कभी अजमाइएगा। जब कोई प्रश्न का समाधान ना मिल रहा हो ना, तो आप इसे उठाइए और आप इसे पढ़ना शुरू कीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर आएगा। हमने हजारों बार, आज रात को कोई बात हुई, कोई समाधान समस्या आई, कोई हुआ, सुबह जैसे कोई एज इट इज लाइन छाप के मेरे लिए रखी हो, आप इसे आजमा के देखिएगा। मुरली जिसको हम कह सकते हैं जादुई शक्ति है, कभी भी कोई भी ऐसी बात आती है हम आराम से मुरली पढ़ते हैं और उसका समाधान आता है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद में यहाँ पर शुरू होता था। मैं एक लाइन और सुना करके फिर आज का सेशन पूरा करती हूँ, जिसमें आया है ये बच्चों का ही गाया हुआ गीत है। कौन सा गीत? अभी अभी तो सुना है, न वे हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ये जो रिकॉर्ड बज रहा था, इस रिकॉर्ड पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से कह रहे हैं कि न वे हमसे जुदा होंगे वाला गीत बच्चों ने ही गाया है और बच्चे ही सुन रहे हैं। ये बच्चों की कौन बोलता है? आत्मा बोलती है। अगर आत्मा निकाल दें तो तन बोल सकता है? बोल सकता है? फिर लोग ही बोलते हैं उस तन के बारे में, वो बेचारा तन तो कुछ भी नहीं बोल सकता है। अब बच्चों को करना क्या है, यहां पर आप ध्यान से कभी मुरली देखिएगा, उसमें आज के दिन में मुझे क्या करना चाहिए वो आता है, और वो है कि हमें आत्म अभिमानी बनना है। यह अभिमान अभिमान के रूप में नहीं, स्वमान के रूप में है कि बार बार ये अभ्यास करें। मानो किसी को, जैसे सूरज भाई जी बता रहे थे, बहुत क्रोध आता है, आता है, इरिटेशन होती है, जल्दी जल्दी होती है, अब उसके बस की नहीं है, वो क्या करे, बार बार जब कभी अकेला बैठा हो अपने आप को आवाज दे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, आई एम वेरी लवली सोल, आई एम वेरी लवली सोल। अब क्या होगा, उसके अंदर प्रेम जागृत होना शुरू होगा, और जहां प्रेम है वहां क्रोध हो नहीं सकता। इस तरीके से ये मुरली चलते हुए लास्ट में इसके जब संपन्न होती है तो इसमें कुछ वर्षण आते हैं। मीठे बच्चे से शुरू होती है, मीठे बच्चे पर संपन्न होती है, उसमें आता है अच्छा। जब कंप्लीट होती है चार पेज की मुरली तो एक वर्षण आता है अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्यों, क्योंकि ये सुबह में मुरली चलती थी, और वैसे भी काल चक्र में देखो तो जब परिवर्तन की वेला होती है वो मॉर्निंग होती है, जब जागो तब सवेरा। तो यहां पर आता है अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बाप माना परम पिता परमात्मा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को माना हम आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। फिर हम भी रिटर्न में कहते हैं रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। इस तरह से ये मुरली चलती है। तो आप सबके शायद बहुत सारे लोगों की एक क्यूरियोसिटी थी, वो जानना चाहते थे। फिर लास्ट में पूरी मुरली का सार, जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाई देते हैं ना, पूरा लेसन पढ़ा के फिर लास्ट में कोई एक या दो पॉइंट देते हैं ताकि याद रह सके। वैसे भी टीचर जब चेक करता है तो ऊपर का कर लेता है, नीचे का करता है, देख लेता, समझ जाता है। तो वो दो पॉइंट सार रूप में याद रखना, जैसे इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा है, तो ये सारा दिन याद रखना, ये मेरा रथ है और मैं इस पर विराजमान रथी आत्मा इसको चला रही हूं। ये 10 इंद्रियों का घोड़े वाला रथ है, बार 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 रिकॉल कर सकते। ऐसे ही इसमें वरदान आता है, एक वरदान का मतलब समझते, जिसको हम अगर अप्लाई कर ले तो हमारे जीवन के लिए बहुत फायदेमंद, बहुत सुखदायी, जिसमें आज का आया है नथिंग न्यू। नथिंग न्यू मीन्स कुछ नया नहीं है, पुनरावृत्ति है, यूं ही वापस पुनर चलता रहता है। संसार में कुछ भी नया नहीं है। नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले, काय को बहस करने जो कुछ है ही नहीं, ऐसा होता है ना, ज्यादा करने से होना भी क्या है, चलो छोड़ो ना। अब इस चलो छोड़ो में ना बहुत कुछ समाया है, इसको कहते हैं बिंदी लगाना, स्टॉप। अच्छा, आप कितना खींच लोगे किसी बात को, लास्ट क्या करते हैं, चलो छोड़ो, कोर्ट केस कर लो, कितने बरस बिता लो, फिर लास्ट क्या होगा। तो नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भवा। अब ये आज का वरदान है कि मुझे मेरे मन को अचल और अडोल रखना है। इस तरह से मुरली में, और लास्ट में आता है एक स्लोगन। स्लोगन बड़ा इजी, सिंपल, व्यवहारिक होता है, जो कि हमारे जो बड़े भाई हैं उनके द्वारा बनाया हुआ सुखदाता बाप के, भगवान से बड़ा सुख देने वाला संसार में कोई नहीं, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती। जहां सुख है वहां दुख नहीं, और जहां दुख है वहां सुख नहीं। इस तरह से ये मुरली हम सुनते हैं और आपस में एक बहन सुनाती है, बाकी सारे बैठ करके सुनते हैं। और हम ऑनलाइन भी, जब से हमारा ये कोरोना काल चला था तब से लेकर अब तक, ऑनलाइन जूम या दूसरे माध्यम से भी हम मुरली पर जुड़े रहते हैं। और भी कोई आपके प्रश्न हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। आई होप आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, थैंक यू, ओम शांति।